नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दीजिए, ताकि आज के वचन के द्वारा हम अपने जीवन में और आगे बढ़ सकें और आपके उन महान आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें प्रतिज्ञा के देश तक लाया, क्या इसलिए कि उनमें कोई प्रशंसनीय गुण था, अन्यों की तुलना में अधिक सुंदर थे? जी नहीं, परमेश्वर दयालु और प्रेमी है और इसी कारण उसने उन्हें लाया। परमेश्वर उन्हें उनके पितरों का इतिहास सुना रहा है कि उन पर प्रकट हो कि उनके पूर्वज प्रशंसनीय नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने उनकी सदैव सुधि ली और यही इस पीढ़ी के लिए प्रोत्साहन का कारण है कि परमेश्वर भविष्य में भी उन्हें संभालेगा। आइए अब हम देखते हैं इसराइल के अतीत की चूक। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, इस बात का स्मरण रख और कभी भी न भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है जब तक तुम इस स्थान पर न पहुंचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मूसा उन्हें उस समय का स्मरण कराता है जब उनके माता पिता ने सोने का बछड़ा बनाया था और उसकी पूजा कर रहे थे, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध भड़का था, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं। और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा, तब वे कहने लगे कि हे इसराइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। मेरे मित्रों, हारून ने उनकी सोने की बालियों से बछड़ा बनाया था। पुरुष के कान में सोने की बालियां मूर्ति पूजा का प्रतीक थी। पुरुष एक कान में बाली पहनते थे। स्त्री पुरुष सब ने अपना सोना हारून को दे दिया था। वे अति शीघ्र मूर्ति पूजा में लीन हो गए थे और हारून ने उन्हें एक सोने का बछड़ा तैयार करके दे दिया, और इसराइली कहने लगे, हे इसराइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। परमेश्वर उन्हें इसका स्मरण कराते हुए सावधान कर रहा है। और आगे चलकर हम भजन संहिता 106 उसके 19 में पाते हैं कि परमेश्वर फिर उन्हें इसी घटना का स्मरण कराता है। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। परमेश्वर ने उन्हें सदैव स्मरण रखने को कहा था, परंतु वे भूल गए थे। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। मूसा अपना उपदेश आरंभ रखता है और तब हम व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ यहां से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उन्होंने उसको छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली है। मेरे मित्रों, जिस समय वे सोने का बछड़ा तैयार कर रहे थे, उसी समय मूसा पर्वत पर परमेश्वर से आज्ञाएं प्राप्त कर रहा था, जिनमें से 2 आज्ञाएं मूर्ति पूजा के ही विरोध में थी। तू मुझे छोड़ किसी और की उपासना न करना, अर्थात मूरत न बनाना। यहाँ ध्यान दें, परमेश्वर मूसा से कहता है, तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र से निकाल कर लाया है। मूसा अभी थोड़ी देर में उत्तर देगा, जिसे हम व्यवस्था विवरण 9 अध्याय और उसके 13 पद में पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा कि मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं। परमेश्वर फिर कहता है कि वह सदैव ही उनके हठीलेपन को संबोधित करता रहा है। वह आपको और मुझे भी जानता है और हमारे विषय में भी वह यही कह सकता है। व्यवस्था विवरण 9 उसके 14 पद में आगे लिखा है, इसलिए अब मुझे तू मत रोक ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम व चिन्ह तक मिटा डालूं, और मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी जाति और बड़ी सामर्थ्य जाति तुझी से उत्पन्न करूंगा। मूसा के लिए यह एक परीक्षा थी, परंतु उसने परीक्षा पर जय पाई। इसराइल के लिए उसकी याचना निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसके 12 से 17 पद में दी गई है। मूसा परमेश्वर के बिना प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाना चाहता था। उसने कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले चल। मूसा इसराइल के साथ अपनी पहचान बनाता है, और जब मूसा पर्वत पर से नीचे आया तब उसने देखा कि इसराइल ने क्या किया था। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं, और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया है, और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने तज दिया। यहाँ परमेश्वर उनके लिए आज्ञाएं दे रहा था और वहां के पहले ही आज्ञाओं को वे तोड़ रहे थे, तथापि वे कहते थे कि वे परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। मनुष्य हर बात से अधिक धर्म के विषय में ढोंग रचता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि यह मानव स्वभाव है। यहाँ तक कि निष्ठावान मनुष्य भी आडंबरी होता है। हमें भजनकार की प्रार्थना दोहराना चाहिए, जिसे हम भजन संहिता 139 उसके 23 और 24 में पढ़ते हैं। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे मित्रों, हर एक जन जो परमेश्वर की संतान है उसे यह प्रार्थना करना आवश्यक है। तब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय उसके 5 पद में पौलुस के द्वारा पाते हैं, जो उसने विश्वासियों को लिखा और चिताया, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। ध्यान दे, जांचो कि आप विश्वास में हो या नहीं। मेरे मित्रों, मैं विश्वासी की सुरक्षा में विश्वास करता हूं और उसका प्रचार भी करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि विश्वासी सुरक्षित है, परंतु मैं यह भी मानता हूं कि ढोंगी विश्वासी सुरक्षित नहीं है और उसका प्रचार भी करता हूं। विश्वास के ढोंगियों की कमी नहीं है। हम में से हर एक को अपना मन खोजकर देखने की आवश्यकता है। हम व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 17 और 18 पद में पढ़ते हैं, तब मैंने उन दोनों पटियाओं को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। जब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले की नाई अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। मेरे मित्रों, मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप ध्यान दें। मूसा परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानता था। भजन संहिता 103 उसके 7 में भजनकार कहता है, उसने मूसा को अपनी गति और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। इसराइल के वंशजों ने पर्वत पर से धुआं उठता देखा, उन्होंने परमेश्वर के प्रताप को देखा, उसकी महिमा देखी, परंतु वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। परंतु मूसा परमेश्वर को जानता था, वह परमेश्वर की गति को भी जानता था। मूसा परमेश्वर के बारे में दो बातें जानता था, और वे यहाँ प्रकट हैं। वे एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु विरोधी नहीं हैं। मूसा जानता था कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम में से किसी को भी इसका लेश मात्र ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर पाप से कैसे घृणा करता है और उसे कैसा दंड देना चाहता है। मूसा परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरा और 40 दिन एवं 40 रात उपवास के साथ रोता रहा। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर की गति जानता था। वह जानता था कि परमेश्वर पाप से कैसी घृणा करता है। मेरे मित्रों, आज का विश्वासी नहीं जानता है कि परमेश्वर पाप से कैसी घृणा करता है। परमेश्वर हमारे एक भी पाप को अनदेखा नहीं करता। वह आपके जीवन में और मेरे जीवन में पाप का न्याय करेगा। मैं लंबे समय तक प्रभु का सेवा कर रहा हूँ और मैंने वर्षों से कलीसिया के सदस्यों को देखा है, और मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि वे परमेश्वर के साथ चतुराई का खेल खेलते हैं। मैंने उन्हें मुखौटा पहनते देखा है। वर्षों गुजर जाने के बाद मैंने उन्हें परमेश्वर के दंड के अधीन भी होते हुए देखा है। कभी कभी तो दंड अत्यधिक कठोर रहा है। मुझे विशेष करके एक पुरुष का स्मरण आता है। वह मेरे पास आया और घुटनों पर गिरकर रोने लगा और कहा कि वह परमेश्वर के दंड को सहन नहीं कर पा रहा है। उसके बच्चे मर गए थे, उसका परिवार उजड़ गया था। मैंने उसे युवावस्था में देखा था, जब उसका विवाह हुआ था। वह भी यही सोचता था कि परमेश्वर को मूर्ख बनाया जा सकता है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, वह पाप का दंड भी देता है। मेरे मित्रों, क्या आज आप भी ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं? मूसा परमेश्वर की दया को भी जानता था और परमेश्वर के निकट आने का साहस कर पाया, क्योंकि वह परमेश्वर की दया में विश्वास करता था। परमेश्वर पाप का दंड तो देता है, परंतु मेरे मित्रों, हम उसकी महानता को समझ नहीं पाते हैं। वह अति अनुग्रहकारी है, वह पापी को दया दिखाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसने आप पर अपनी दया प्रकट की है। मुझ पर तो उसने निश्चय ही दया दर्शाई है। परमेश्वर ने इसराइल को भी दया दिखाई। सुनिए आगे क्या कहता है व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 19 पद में। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हें सत्यानाश करने को था, परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी कि मूसा उसका प्रिय था या इसराइल का अगुआ था। उसने मूसा की प्रार्थना स्वीकार की क्योंकि वह दयावान है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 15 पद में पौलुस परमेश्वर की दया को स्पष्ट करता है। वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर प्रभुता संपन्न है और वह अपनी प्रभुता में ही दया दर्शाता है। वह कैसा महान है! आप और मैं परमेश्वर के ये दो गुण पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, पाप से उसकी घृणा और उसकी दया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9 अध्याय उसके 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसे भी सत्यानाश करना चाहा, परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की, और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया, और फिर उसे पीस पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल की नाय जीर्ण हो गया, और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। यह घटना यदि त्रासदीपूर्ण नहीं तो हास्यजनक तो है ही नहीं। मूसा उन्हें उनकी मूर्ति की भस्म पिलाता है। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 22 से 24 पद में आगे लिखा है, फिर तबेरा और मस्सा और किब्रोत हतवा में भी तुमने यहोवा को रिस दिलाई थी। फिर जब यहोवा ने तुमको कादेश बनने से यह कहकर भेजा कि जाकर उस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया, और न तो उसका विश्वास किया और न उसकी बात ही मानी। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूं उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। मेरे मित्रों, यह केवल सारांश है। ऐसा एक दिन भी नहीं था कि वे परमेश्वर के निष्ठावान पाए गए। कैसी दशा! हम उनकी ओर उंगली उठाते हैं, परंतु आज के विश्वासियों की दशा क्या है? मुझे भय है कि अनेक, यहाँ तक कि रूढ़िवादी कलीसियाओं में भी अनेक जन हैं जो परमेश्वर के निष्ठावान नहीं हैं। एक दिन भी नहीं। हम अपने विश्वास की दृढ़ता की डींग मारते हैं, परंतु हमारा विश्वास शिथिल है। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 25 पद में लिखा हुआ है, मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुमको सत्यानाश करेगा। यह उस समय की बात है जब इसराइल ने कादेश बर्ने में प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था, और मूसा जानता था कि परमेश्वर पाप को दंड देता है। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 26 से 29 पद में आगे हम पढ़ते हैं, और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजा रूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट न कर। अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर, जिससे ऐसा ना हो कि जिस देश में से तू हमको निकाल कर ले आया है वहां के लोग कहने लगे कि यहोवा उन्हें उस देश में जिसके देने का वचन उनको दिया था नहीं पहुंचा सका और उनसे बैर भी रखता था, इसी कारण उसने उन्हें जंगल में निकाल कर मार डाला है। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग हैं जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। मेरे मित्रों, मूसा जानता था कि प्रार्थना कैसे की जाए। काश मैं वैसी प्रार्थना करना जानता। याद कीजिए, परमेश्वर ने मूसा से कहा था पद 12 में कि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र देश से निकाल कर ले आया है वे बिगड़ गए हैं। मूसा परमेश्वर की गलती सुधार रहा है। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग हैं जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल लाया है। मूसा परमेश्वर को स्मरण कराता है कि वहां के वसिंदे सोचेंगे कि परमेश्वर इसराइल को प्रतिज्ञा के देश में लाने में असमर्थ है। वह उन्हें मिस्र से निकाल तो लाया है परंतु यहां आकर हिम्मत हार गया। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर को बाध्य करती है। यहां इसराइल प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने जा रहा है। यही एक प्रमाण है कि मूसा प्रार्थना करना जानता था। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 9 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 10 से अपने अध्ययन को जारी रखते हैं। विषय है, परमेश्वर ने इसराइल को मिस्र भेजा और वही इसराइल को मिस्र से निकाल कर लाया। मेरे मित्रों, जैसा मूसा ने अपनी प्रार्थना में कहा था कि इसराइल परमेश्वर की प्रजा है, वे उसके हैं, वह उन्हें उनके पाप के कारण नाश नहीं करेगा, वरन उन्हें फिर से 10 आज्ञाएं देता है जो उसने स्वयं लिखी है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पटियाएं गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले और मैं उन पटियाओं पर वे ही वचन लिखूंगा जो पहले पटियाओं पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला और तू उन्हें उस संदूक में रखना। मूसा ने यह पटियाएं वाचा के संदूक में रख दी। अब इसराइल अपनी यात्रा में आगे बढ़ा। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा हुआ है, उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश व भाग नहीं मिला, यहोवा ही उनका निज भाग है जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। मेरे मित्र, इन पदों में हमारे लिए महान आत्मिक शिक्षा विहित है। लेवी वंश याजकीय गोत्र था और उसी प्रकार कलीसिया याजकों का राज्य है, अर्थात मसीह यीशु में विश्वास रखने वाला प्रत्येक जन एक याजक है। मैं रोमन कैथोलिक फादर तो नहीं परंतु याजक अवश्य हूँ जैसा कि मसीह का प्रत्येक विश्वासी है। नए नियम में याजक को आराधना, मध्यस्थता की प्रार्थना और सेवा में स्वयं को परमेश्वर के निमित्त समर्पित करना है। देखिए रोमियों के पत्री 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद में और पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय के अनुसार कलीसिया वरदानों का प्रयोग करता है और उसे करना है। यहाँ ध्यान दीजिए कि लेवियों को सांसारिक उत्तराधिकार नहीं मिला है, उनका उत्तराधिकार परमेश्वर स्वयं था। परमेश्वर ने अन्य सब गोत्रों को भूभाग दिया, जमीन दिया जो सांसारिक और नाशवान आशीष थी, परंतु लेवी वंश को ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं दी गई थी और आज विश्वासियों की यही स्थिति है। लेवी गोत्र के सदृश हमारा उत्तराधिकार भी परमेश्वर ही है। हमें सब स्वर्गिक आशीषें प्राप्त हैं। हम व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और अब हे इसराइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। यहां इसे सुसमाचार मानने की भूल ना करें। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि यदि यही मुख्य बात है तो आप और मैं अधिक आशीषों के वारिस नहीं हैं। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय के 13 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे जिससे तेरा भला हो। मेरे मित्रों, यदि इसराइल आज्ञाओं को मानता तो आशीष पाता, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी और दंड पाया। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने 1500 वर्षों से इसराइल के माध्यम से संसार को और आपको और मुझे यही दिखाया है कि व्यवस्था पालन से हमारा उद्धार संभव नहीं है। वे अनुकूल परिस्थितियों में व्यवस्था प्रभावित भूमि में वास करते हुए व्यवस्था पालन में सफल नहीं हुए। जब वे असफल रहे तो आप और मैं कैसे सफल होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह हमें अनुग्रह के द्वारा मोक्ष अर्थात उद्धार प्रदान करता है। सत्य तो यह है कि अनुग्रह सदा ही उसकी रीति रही है। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने इसराइल को व्यवस्था के आधार पर क्षमादान नहीं दिया। उसकी दया और उसके अनुग्रह के द्वारा ही उन्हें परमेश्वर का क्षमादान प्राप्त हुआ था, जो प्रभु यीशु के आगमन और उसकी क्रूस की मृत्यु के द्वारा पाप मोचन की बाट जो रहे थे। हम व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर परदेशियों से प्रेम करता है और वह इसराइल को भी स्मरण कराता है कि वे मिस्र देश में परदेशी ही थे। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 10 अध्याय के 19 और 20 पद में, इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। प्रभु यीशु ने शैतान को निरुत्तर करने के लिए इस पद का संदर्भ दिया था। हमारा प्रभु निश्चय ही व्यवस्था विवरण का ज्ञाता था, जैसा कि संभवतः प्रत्येक इसराइली उस समय ज्ञाता थे। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 10 अध्याय के 22 पद में आगे पढ़ते हैं, तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दिया है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर की आशीषें स्पष्ट है और परमेश्वर ही उन्हें मिस्र ले गया था और परमेश्वर ही उन्हें मिस्र से निकाल लाया था। परमेश्वर इसका उत्तरदायी था और उत्तरदायित्व निभाने में उसे कोई शिकायत नहीं थी। अब यहाँ पर 10 अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम अध्याय 11 में बढ़ते हैं और उसका विषय है प्रतिज्ञा का देश मिस्र स्वरूप नहीं था, भूमि ग्रहण का नियम। परमेश्वर उनसे उस भूमि की चर्चा कर रहा है जहां वे प्रवेश करेंगे। यह प्रतिज्ञा का देश मिस्र से सर्वथा भिन्न होगा। परमेश्वर उन्हें वहां निवास करने के नियम देगा। आइए देखते हैं समर्पण की पुकार। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। परमेश्वर के प्रेम की प्रतिक्रिया आज्ञा पालन है। हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण के पुस्तक 11 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मिस्र में वे सिंचाई द्वारा खेती के अभ्यस्त थे। अब हम आगे देखेंगे व्यवस्था विवरण 11 अध्याय के 10 पद में, देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहां से निकलकर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। मित्रों, मुझे बताया गया कि मिस्र में वर्षा वर्ष में 1 इंच से कम होती है, जो लगभग नहीं के बराबर है। कहीं कहीं जैसे हवाई द्वीप पर या द्वीप समूह में वर्षा 100 इंच प्रति वर्ष है। अतः मिस्र को कृषि के लिए सिंचाई पर निर्भर रहना होता था। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसके 11 से 15 पद में, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तुम अपना अन्न, नया दाक मधु और टटका तेल संचय कर सकोगे। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। मेरे मित्रों, यह भूमि जहां वे जाएंगे वह पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण खेती के लिए सिंचाई में कठिन स्थान होगा। उस युग में सिंचाई के आधुनिक साधन नहीं थे, उन्हें आकाश से वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जैसा कि आज भी बहुत सारे देश में ऐसे लोग निर्भर रहते हैं। परमेश्वर ने जानबूझकर यह व्यवस्था की थी। परमेश्वर ने उन्हें उस भूमि पर इसलिए रखा था कि वे वर्षा के लिए उस पर निर्भर रहें। इस प्रकार वे परमेश्वर की घनिष्ठता में रहेंगे। मेरे प्रियो, आज वह स्थान उजाड़ है। इसका कारण है परमेश्वर का दंड, जैसा हम व्यवस्था विवरण में आगे चल करके देखेंगे। उस भूमि को जल मिलते ही वह गुलाब की नाई खिल उठती है। उस भूमि का जान पानी है और आज भी वहां पानी की समस्या है। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि उन्हें वर्षा पर निर्भर रहना होगा। यदि वे उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वह उन्हें आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा देगा, अर्थात पतझड़ और बसंत ऋतु की वर्षा। उस देश की भूमि को देखकर आप उनकी आत्मिक दशा का अनुमान लगा सकते हैं। मेरे मित्रों, आज के समृद्ध समय में जब सब कुछ आसानी से मिल जाता है तो मनुष्य सोचता है कि परमेश्वर को संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मनुष्य को सब कुछ आसानी से मिल जाता है तो वह उसे अपनी उपलब्धि सोचता है, और यदि कुछ पाने में कठिनाई होती है तो वह सोचता है कि वह परमेश्वर का हाथ है। सत्य तो यह है कि परमेश्वर ही है जो हमारी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, चाहे हमें कुछ आसानी से प्राप्त हो या कठिनाई से। देने वाला तो वही है। मेरे मित्रों, आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक आशीष को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया, जब से मसीहा